हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जून 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 4 जून को गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के शिलांग का दौरा करेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं मौसम विभाग का भी कहना कि आज 4 जून को केरल राज्य पहुंच जाएगा मानसून। तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मौत के कई महीनों बाद अब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई का अंतिम संस्कार होगा। इसके चलते ईरान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कई शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। उनकी मौत तो 28 फरवरी को ही हो गई थी अमेरिका के हमले में, लेकिन मौत के कई महीनों बाद अब जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो मौत के तकरीबन 4 महीने बाद खामेनेई का अंतिम संस्कार होगा ईरान के मशहद शहर में। उन्हें सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। IRGC की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने 21 जून के आसपास उन्हें आखिरी विदाई दी जा सकती है। वहीं अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। खाड़ी देशों में एक और बड़े महायुद्ध की शुरुआत हुई। ईरान के केशम द्वीप पर अब अमेरिका ने हमला किया, तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला देखने को मिला। हॉर्मुज रूट में एक बार फिर से युद्ध का खतरा बढ़ गया। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान दोनों देश फिर से आमने सामने आए। मिसाइल और ड्रोन हमलों से युद्ध विराम सीज फायर भी टूट गया। कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमला देखने को मिला। और कुवैत एयरपोर्ट पर तो ड्रोन हमले में एक भारतीय शख्स की भी मौत हो गई। हवाई अड्डों पर हमलों के बाद भारत की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की। देखिए, कुछ ही घंटों पहले कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हुई और 63 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कईयों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका के ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक देखने को मिला। तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में जो भारतीय नागरिक की मौत हुई, उसके बाद भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की कड़ी निंदा की और भारत ने सभी पक्षों से तत्काल हमले रोकने की अपील भी की है। तो देखा जाए तो कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के साथ ही खाड़ी देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। स्ट्राइक के बाद कतर भी भड़क गया। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्लान कर रहे हैं कि भारतीय सामानों पर 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। ना सिर्फ भारत पर बल्कि अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया। जहां एक तरफ अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, इस बीच अमेरिका अब भारत समेत दुनिया के 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने बेतुके आरोप लगाते हुए कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। USTR ने भारत समेत 60 देशों पर ये एक्स्ट्रा टैरिफ टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो अमेरिका के इस टैरिफ प्रस्ताव का असर दिखा। भारतीय रुपया 28 पैसे और टूटकर 95.64 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच चुकी है रुपये की वैल्यू। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। बीते दिन जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। दिल्ली के मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी, चारों तरफ चीख पुकार से मच गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग तो विदेशी नागरिक थे जो भारत में टूरिस्ट के तौर पर घूमने आए थे। अधिकतर नाइजीरिया, बांग्लादेश और लाइबेरिया के देशों से थे। और वैसे दिल्ली के जिस होटल में ये आग लगी, उस होटल के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में 11 विदेशी हैं और 8 लोग राजस्थान और हरियाणा राज्यों के हैं। बताया जा रहा है कि होटल की फायर NOC भी नहीं थी। ये अग्निकांड की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस होटल का मालिक, जिसका नाम लवकेश बजाज है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 21 की मौत हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और होटल में सुरक्षा मानकों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में कमरे और किचन बनाए गए, जो कि रूल्स के अगेंस्ट थे। ना वेंटिलेशन था, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट था। दिल्ली के जिस होटल में आग लगी, उसका मालिक पास में ही ऐसे 2 और होटल चला रहा है। और होटल में जितने रूम बनाने की परमिशन थी, उससे कई गुना ज्यादा कमरों का निर्माण किया गया था। दिल्ली के इस होटल अग्निकांड की घटना पर वर्ल्ड मीडिया का कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। अल जजीरा ने लिखा कि भारतीय इमारतों में सुरक्षा इंतजाम नहीं है। तो वहीं BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि नियमों की अनदेखी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो दिल्ली अग्निकांड की इस घटना में जान गंवाने वाले सभी परिवारों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे, मरने वालों की आत्मा को शांति दे और घायलों के हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। PM मोदी की कैबिनेट मीटिंग में टोटल 6 बड़े फैसले लिए गए। 39,000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। जो अभी पश्चिम एशिया संकट चल रहा, अमेरिका ईरान वगैरह का युद्ध, इस बीच सरकार ने देश में ये बड़ी राहत दी है। एक तो ATF यानी हवाई फ्यूल के ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित करने की घोषणा की है। और दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण घटाने के लिए 9,585 करोड़ की नई योजना शुरू की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, जिसके तहत पुराने BS4 वाहनों को BS6 या इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार खुद अब दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को भी बदलेगी। वहीं हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सेक्टर समेत कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए बड़ा दांव शुरू किया केंद्र सरकार ने। ये टोटल 6 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए कई राज्यों में सड़क अवसंरचना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जाएगा। उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अलग अलग राज्यों में कई बड़े नेशनल हाईवे वगैरह के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि घरेलू मांग के चलते भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। HSBC की PMI रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है। वहीं खबर देखिए, गुजरात में सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा शुरू किया। गांधीनगर से 362 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की और उनके लिए देश निकाला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में भी 166 बांग्लादेशी पकड़े गए। टोटल अलग अलग जिलों में 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। शहर के 3 इलाकों में गुजरात पुलिस ने यह बड़ा एक्शन प्लान शुरू किया और जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा ऐसा। चलिए खबर आ रही है, रेलवे टेंडरों की अब AI से जांच शुरू हुई। फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाली हाथरस की फर्म पर 2 साल तक का बैन भी लगाया। भारतीय रेलवे की यह नई पहल है। और बड़ी खबर देखिए, इबोला वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। अफ्रीकी देश के लिए एक और बड़ी चिकित्सकीय सहायता भेजी है। 2.5 टन चिकित्सा सामग्री अभी हाल ही में 24 मई को भेजी गई थी। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। आपको पता होगा कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने कई देशों में वैक्सीन भेजी थी। तो अभी जो ये इबोला का संकट चल रहा तो भारत इस मौके पर भी अफ्रीकी देशों की मदद कर रहा है। चलिए खबर है, चांदी खरीदना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने सिल्वर के इम्पोर्ट के नियमों को और सख्त कर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने देश में चांदी के बढ़ते इम्पोर्ट को रोकने और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चांदी के कुछ खास कैटेगरीज के इम्पोर्ट नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। देख सकते हैं आप सरकार ने क्या नया नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब कारोबारी व्यापारी आसानी से चांदी का इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। आखिर सरकार ये कदम क्यों उठा रही है? तो चांदी के इम्पोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला पिछले कुछ समय से, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा, तो इस पर बैलेंस बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया ऐसा। वहीं रिपोर्ट आ रही कि GST ग्रोथ के मामले में हरियाणा का शिखर देखने को मिला। पूरे देश में नंबर 1 बना हरियाणा राज्य। राष्ट्रीय औसत से 4 गुना तेजी से दौड़ा GST टैक्स कलेक्शन हरियाणा में। यह आंकड़े आप देख सकते हैं, 22% तक का उछाल देखने को मिला। और एक बड़ी खबर देखिए आप, नीट UG का पेपर लीक कराने वाला खुद वो स्टूडेंट भी 21 जून को देगा री एग्जाम। दिल्ली की कोर्ट ने जेल में उस स्टूडेंट को पढ़ाई करने की इजाजत दे दी है। नाम है यश यादव। मतलब जिसने पहला पेपर लीक करवाया वो वापस पेपर दे पाएगा, ये दिल्ली कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अभी से आप क्या कहोगे, विडंबना या क्या? वहीं खबर देखिए, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जिसके तहत अब तय होगी पर्वत की परिभाषा और खनन संरक्षण के नियम भी। ये समिति 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा पर सीमांकन और सुझाव देगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, देखिए आप कि भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखा पड़ने की आशंका है। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया कि सभी राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करें, क्योंकि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये 2 सिस्टम बने तो ही भारत और अन्य देशों में बारिश की उम्मीद रहेगी, वरना दुनिया भर में सूखा पड़ सकता है। इस साल न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अल नीनो का असर दुनिया भर में दिख सकता है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बाद अब दुनिया के वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन WMO की तरफ से भी देर रात जलवायु को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। UN यानी संयुक्त राष्ट्र की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से लेकर अगस्त तक इस बार अल नीनो बनने की 80% आशंका है। इतना ही नहीं, नवंबर तक इसके 90% या उससे भी ज्यादा बने रहने की आशंका है। तो इस वजह से सूखा पड़ सकता है भारत में भी, और सूखे के खतरे के साथ साथ भीषण गर्मी भी आगे आने वाले कुछ महीनों में और पड़ने की आशंका रहेगी। ये जो सुपर अल नीनो है ये अभी मई जुलाई से शुरू होगा, जो कि सर्दियों तक जारी रहने के आसार है। तो इससे मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस साल भारत में बारिश कम होगी, अकाल जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने एक और बड़ी चेतावनी दी, कहा कि जून से अगस्त तक भयंकर गर्मी का अलर्ट रहेगा, ये अल नीनो की वजह से आफत और बढ़ेगी ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मॉनेटरी की पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं दिख रही है। वैसे अभी हमारे भारत में रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है। तो 3 दिन ये मीटिंग चलेगी, उसके बाद इसमें रिजर्व बैंक द्वारा क्या क्या फैसले लिए जाते हैं जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। 5 जून को मीटिंग के फैसलों का ऐलान किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने ATF की कीमतों पर 75.5 रुपए प्रति लीटर कैप लगा दिया है। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री को फ्यूल फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। इससे जेट फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा ताकि हवाई यात्रियों को राहत दी जा सके। हवाई किराया वगैरह ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ी राहत दी है। इस नए फंड से क्या क्या 6 बड़े फायदे होंगे ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले मैंने आपको क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताई थी, जिसके मुताबिक 2.5 रुपए और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल भी। और क्योंकि अभी तो युद्ध के हालात वापस शुरू हो चुके हैं, तो महंगाई और बढ़ेगी दिनों दिन, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनसीआर में अब पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को 30-35% कम करने का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत आने वाले 1 अक्टूबर से नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी नो फ्यूल नियम लागू होगा और पुराने वाहनों व औद्योगिक उत्सर्जन पर भी नियंत्रण किया जाएगा। तो अब अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आगामी 1 अक्टूबर से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके अलावा यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी इन सभी को भी और इनके परिवारों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। ऐसा वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए, आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे डिटेल विस्तार से। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अब टूटती नजर आ रही है क्योंकि टीएमसी के 58 विधायकों ने मिलकर अलग गुट बना लिया, एक तरह से अलग पार्टी बना लिया। ऋतव्रत बनर्जी को इस नई पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया और स्पीकर ने भी इस नई पार्टी को मंजूरी दे दी। बीते दिन बुधवार को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना और विधानसभा स्पीकर रणथिंद्र बोस को समर्थन पत्र भी सौंपा। इतना ही नहीं, कोलकाता में भी ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से भी इस्तीफा दे दिया। और बड़ी खबर देखिए, बंगाल में ईडी की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में उनको समन दिया गया। वहीं अब एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बंगाल में टीएमसी नेता घूस के पैसे लौटा रहे हैं। सरकारी लाभ के बदले ये पैसे लिए थे लेकिन अब नेता वापस ये पैसे लौटा रहे हैं जिन लोगों से लिए थे उनको। नादिया में महिलाओं की योजना में 173 पुरुषों के नाम भी सामने आए। पश्चिम बंगाल से तृणमूल नेताओं के लोगों को पैसे बांटने के ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये रिश्वत के पैसे वापस लोगों को लौटाए जा रहे हैं ऐसा। वहीं कर्नाटक की राजनीति में भी खबर देखिए। डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। संविधान हाथ में लेकर उन्होंने शपथ ली। जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली। वहीं खबर देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में है। वो बोले कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी ने 3 प्रवक्ता भी नियुक्त किए क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, संस्थापक, वो खुद 6 जून को भारत लौट रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का नाम है अभिजीत दीपके। ये फिलहाल अभी अमेरिका के बोस्टन में है लेकिन 6 जून को ये भारत दौरे पर आ रहे हैं ऐसा। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि एयरपोर्ट पर आकर मिलो। और बड़ी खबर देखिए, जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पर ईडी कोर्ट में 8 जून को फैसला आएगा। ईडी की विशेष अदालत अपना निर्णय सुनाएगी 8 तारीख को। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के गार्ड को भी घायल कर दिया। खान सर तो बोले कि फायरिंग भी हुई, दूसरे कोचिंग वालों ने उड़ाने की धमकी दी थी, ये भी आरोप लगाए उन्होंने। इस हमले के और फायरिंग के कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। गार्ड से मारपीट की गई, पोस्टर फाड़े। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अभी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यह हमला हुआ उसको टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। हमले के बाद खान सर ने बड़ा फैसला लिया, ग्लोबल स्टडीज पर आगे की कार्यवाही तक ताला लटका रहेगा ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के चंबल में रेत के अवैध खनन का वीडियो सामने आया तो एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और कहा कि माफिया पर बेअसर दिख रही है सरकार की कार्यवाही। मशीनों से ट्रॉलियां भर रहे हैं, अब टीम जांच करने पहुंची है। ये वीडियो 2-3 जून का बताया जा रहा है जिसमें मुरैना जिले की चंबल नदी से अवैध तरीके से रेत की खनन की जा रही है। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारतीय मूल की एक लड़की ने सुधारी ऑक्सीमीटर की एक बड़ी खामी। पल्स ऑक्सीमीटर जो आता है ना, छोटा सा डिवाइस उंगली के लगा करके ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उससे, तो इसमें एक बड़ी खामी थी। इतने दिन ये काले गोरे लोगों में अलग अलग रीडिंग देता था लेकिन भारतीय मूल की लड़की ने इसकी बड़ी खामी को निकाला तो अब ये काले गोरे में फर्क नहीं देखेगा। कनाडा में रहने वाली पंजाब मूल की 17 साल की स्टूडेंट ने इस ऑक्सीमीटर डिवाइस की 53 साल पुरानी गलती को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दिया। ये वाकई में भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि आखिर भारतीय लड़कियां कितनी टैलेंटेड है, राइट। इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला बाकायदा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद को 22 मिनट में ढा दिया गया। आधी रात 1000 से ज्यादा जवान तैनात रहे, 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा रातों रात हटाया गया। वाराणसी में आधी रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया है। प्रशासन का कहना कि ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी, मामला कोर्ट गया था और वहां से फैसला रेलवे के पक्ष में आ चुका है, यही वजह कि सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की। चलिए खबर है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने नया इतिहास रचा। 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है जून महीने में। वहीं प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा दिख रहा। 15,000 से ज्यादा विदेशी अवैध डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान में भी ये रिपोर्ट सामने आ रही। गुजरात की तरह कई अवैध तरीके से विदेशी नागरिक रह रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए अब राजस्थान सरकार भी अभियान चलाएगी। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना का आगाज हुआ। 28 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंचे 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनावी वादा पूरा हुआ, हर पात्र महिला तक लाभ पहुंचेगा। इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में 28 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 3,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। और खबर है, ओलंपिक 2036 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। 8 साल की उम्र में खोजे जाएंगे चैंपियन। हरियाणा बना रहा गोल्डन जेनरेशन भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने यह नया प्लान बनाया। वहीं खबर है, गर्मी की छुट्टियों में इस बार चमकेंगे हरियाणा के सरकारी स्कूल। 1,00,000 रुपए तक के मरम्मत और आधारभूत सुविधाओं के कार्य तुरंत पूरे करने के निर्देश दिए हैं हरियाणा सरकार ने। स्कूलें खुलने से पहले स्टूडेंट्स के लिए सुविधाओं को सुधारा जाएगा और स्थानीय स्तर पर ये कार्य करवाए जाएंगे ऐसा। और बॉलीवुड से खबर है, आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी कर सकते हैं। 5 जुलाई को मैरिज सेरेमनी होने का दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में। वहीं देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट पहुंची। खुद को बेकसूर बताया। सुकेश के ठगी के पैसों से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप है इन पर। और आपकी हेल्थ को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए आप, दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट ने चेतावनी दी, कहा कि टेक गैजेट्स पर ज्यादा निर्भरता आपके दिमाग के लिए घातक हो सकती है। आजकल के युवा जो ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिल रही है कि कोई काम नहीं किया फिर भी अपने आप को थका महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सूचनाओं का असर दिख रहा है उन पर। लंदन की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च की और चौंकाने वाली जानकारी दी है। इसलिए जितना हो सके मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन चीजों से दूर रहें, अवॉइड रहें। इसके बजाय प्रकृति में घूमें फिरें, मेडिटेशन करें, ध्यान, योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें ऐसा। और भारत के युवाओं पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि लंबी छुट्टी के बजाय आजकल छोटी यात्राएं पसंद कर रहे हैं जेन जी युवा। एयरबीएनबी की रिपोर्ट के मुताबिक 66% युवा यात्रा से 1-2 सप्ताह पहले ही बुकिंग करते हैं ऐसा। भारत में जेन जी की वजह से घूमने फिरने का तरीका ये तेजी से बदल रहा है। और भारत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5,000 भारतीय रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। जापान में पूंजी की शर्त 29 लाख से बढ़ाकर 2.25 करोड़ कर दी गई है। इस वजह से आवेदन 96% तक घटे हैं। एक्चुअली तो ये नियम जापान सरकार ने लागू किया है विदेशी प्रवासियों को लेकर, तो इस कारण वहां चल रहे नेपाली मालिकाना हक वाले हजारों भारतीय रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा मंडराया गया ऐसा। और डिस्काउंट पर भी रिपोर्ट आ रही है। देखिए आप, दुनिया भर में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, इस वजह से कंपनियों का भी धंधा मंदा पड़ा हुआ है अभी, तो भारी भरकम डिस्काउंट दे रही कंपनियां। मंदी से लड़ रहे हैं बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स भी, क्योंकि इन ब्रांड्स की बिक्री 30% तक घटी है। तो अब जून जुलाई की सेल में कंपनियां फैशन प्रोडक्ट पर 40% तक डिस्काउंट दे रही है ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का मानसून को लेकर कहना है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर मानसून हमारे देश में दस्तक दे देगा केरलम राज्य से। इसके चलते तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वगैरह दक्षिण भारत में तो बारिश की संभावना है ही, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 11 और राज्यों में भी आंधी बारिश की चेतावनी है। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क और फुटपाथ भी धंस गए, कार ट्रैक्टर तक गड्ढे में पलट गए। जम्मू कश्मीर में 3 जगह बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली। और ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, अगले 24 घंटों में देश के 14 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। कई राज्यों में ऑरेंज चेतावनी तो कई राज्यों में येलो अलर्ट भी है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के भोपाल, श्योपुर, रायसेन में बारिश हुई, पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मेहर में बूंदाबांदी देखने को मिली। MP में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा फिर से। राजस्थान में भी उदयपुर में बारिश हुई, डूंगरपुर में ओले गिरे, कई जगहों पर तेज हवा चली जिसके चलते पेड़ पौधे, बिजली के खंभे वगैरह भी टूट गए। और अभी भी आज 4 जून को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है, और कल 5 जून और 6 जून तक भी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार के भी 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंचा वापस। अब अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी, 44 डिग्री तक तापमान जाएगा। पिछले 24 घंटों में गया, सासाराम में बारिश भी हुई। वहीं हरियाणा के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 6 जून तक खराब रहेगा मौसम। नारनौल में रात का तापमान 22 डिग्री तक रहा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल में बारिश हुई, 7 जिलों में येलो अलर्ट है। देहरादून में गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे। काशीपुर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के भी 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। 7 जून तक हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। गरज चमक आंधी के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी अगले 2 दिन आज 4 जून और कल 5 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसमी स्थितियां कैसी रह सकती हैं, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 303 अंक गिरकर 74,346 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 77 अंक नीचे 23,405 पर आया। और मार्केट में निवेश पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि SIP म्यूचुअल फंड का क्रेज फीका पड़ रहा धीरे धीरे। जून 2023 के बाद अब तक सबसे कम निवेशक जुड़े हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में SIP में। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। बिहार में एक बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। JCB से खोदे गए गड्ढे में 7 बच्चे डूबे, बाकी 2 को बचाने की कोशिश है। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा। बिहार के मधुबनी में ये दर्दनाक हादसा हुआ। खेल खेल में बच्चों की जान चली गई। वहीं यूपी प्रयागराज की ये घटना देखिए। एक युवक ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी माता पिता बहन तीनों को मार दिया और फिर दोस्त ने उसे ही मार डाला। बोला कि जो माँ बाप का नहीं वो मेरा क्या होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करोड़पति परिवार में ये बड़ी घटना देखने को मिली। देखिए जरा पैसों का लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है कि खुद माता पिता बहन परिवार वालों को ही मार दिया। यार हद होती है। और ब्रिटेन में भी एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए रॉयल नेवी के 3 जवानों की हेलीकॉप्टर क्रेश में मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय ने जांच के आदेश भी दिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है कि 13 साल की उम्र में एक लड़की के साथ 3 साल में 700 लोगों ने रेप किया। ब्रिटेन का यह मामला है। अब ब्रिटेन की संसद में ग्रूमिंग गैंग पीड़ितों की गवाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर रेपिस्ट आरोपी जो है वो पाकिस्तानी मूल के रहे हैं। वहीं खबर है मिस्र में 26,800 करोड़ की लागत से ड्राइवरलेस मोनोरेल की टेस्टिंग शुरू हुई। काहिरा में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। चीन को पछाड़कर सबसे लंबा नेटवर्क बने गए हैं। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अमेरिका सख्त हुआ। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बोले कि यह हमारी रेड लाइन है। ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही अमेरिका की प्राथमिकता है। और खबर देखिए कि मुज्तबा खामेनेई से मिलने का अब तक सौभाग्य नहीं मिला। ईरान और नेतन्याहू पर चल रही तकरार के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देखने को मिला है। वहीं AI सुरक्षा पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया। उन्नत मॉडल की जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की भी होगी समीक्षा। और खबर है कि अगले महीने 24 जुलाई को फिर होगा व्हाइट हाउस संवाददाता संघ का रात्रि भोज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शामिल होने की पुष्टि की है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। बिहार में स्कूल बसों पर अब सख्त नियम लागू होने जा रहा। बसों में CCTV, GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही होगी। और खबर है बिहार में कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री से बदलेगी उच्च शिक्षा की तकनीक। AI और नई तकनीकों की ट्रेनिंग देंगे उद्योग काम धंधे वाले कॉरपोरेट सेक्टर। बिहार में स्कूलों के साथ अब कॉरपोरेट की ये साझेदारी होने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में मिडिल क्लास के लिए सम्राट कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब 4 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज। जो पहले इलाज के लिए आय सीमा बिहार में 2.5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 4 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोर्स का लाभ लेने के लिए एज लिमिट भी बढ़ाई गई। और बिहार के औरंगाबाद में ITI भी बनाया जाएगा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट की कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। और क्या क्या फैसले लिए गए जिनकी कुछ डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से इन सभी फैसलों की जानकारी दी गई। और एक अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। जून में 200 इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की जाएगी बिहार में। और भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में अब 10वीं 12वीं को छोड़कर दिसंबर में होगी वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल की भी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया। और राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर हादसे पर दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई। LG का महा एक्शन प्लान आज से ही लागू होगा। अब सिस्टम के सफेद पोषों पर चलेगा हंटर। राजधानी में अग्निकांड की घटनाओं पर रोकने के लिए अब ये सरकार ने तुरंत बैठक का प्लान किया है। और खबर देखिए, 38 अरब डॉलर के जुर्माने के आगे आखिरकार झुक गया एप्पल भी। एप्पल कंपनी की ये बड़ी सहमति देखने को मिली। भारत में जांच एजेंसी के साथ अपने आंकड़े साझा करेगा एप्पल। गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि एप्पल ने भारी भरकम जुर्माने के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि एथेनॉल से भारत को होगी बड़ी बचत। सिर्फ 1% बदलाव से बचेंगे 195 करोड़ रुपए। पेट्रोलियम मंत्री ने ये आंकड़ों की जानकारी दी। जो सरकार प्लान कर रही कि भारत में एथेनॉल युक्त गाड़ियां चलाई जाए, तो उस पर ये पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है। और फ्यूल एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का ईंधन निर्यात अक्टूबर 2022 के बाद अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। वहीं खबर देखिए, अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ पर भारत भी नजर रख रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि व्यापार समझौते की बातचीत अभी भी जारी है। और खबरें की सुरक्षित भुगतान के लिए AI कवच तैयार कर रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। स्वदेशी प्रणाली विकसित की जा रही जिससे डेटा की भी सुरक्षा होगी। हमारे देश में पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए रिजर्व बैंक AI टेक्नोलॉजी पर आधारित ये नई तकनीक विकसित कर रहा है ऐसा। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले लाओस के उप प्रधानमंत्री। रक्षा, शिक्षा और व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई भारत लाओस के बीच। और खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते ही DK शिवकुमार ने भी कई बड़े ऐलान किए। छात्रों को फ्री बस पास की सुविधा मिलेगी, युवाओं को रोजगार देने को भी कहा है। देख सकते हैं आप CM की शपथ लेने के बाद क्या क्या ऐलान किए हैं उन्होंने। आखिरकार कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री शिवकुमार का पहला एक्शन प्लान देखने को मिला। और वहीं कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने BK हरि प्रसाद, जो कि अब DK शिवकुमार की जगह लेंगे क्योंकि वो तो CM बन चुके हैं। चलिए खबर है, दिल्ली NCR में सिर्फ 3% ट्रक और बस ही फैला रहे 36% तक प्रदूषण। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रदूषण पर लगाम लगाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना ही एकमात्र रास्ता है। TERI की रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आ रहा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है, जम्मू लद्दाख का चुमार बनेगा देश का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज। 16,700 फीट की ऊंचाई पर हाईटेक सुविधाएं मिलेगी इस गांव में लोगों को। और वहीं देखिए, बिहार में EWS की खाली सीटें अब सिर्फ इसी वर्ग के लिए होगी। हर प्रमंडल में खुलेंगे आवासीय स्कूल, बिहार की सम्राट सरकार ने ये भी बड़ी घोषणा की है। वहीं पंजाब में 65 लाख से भी ज्यादा परिवारों को भगवंत मान सरकार ने बड़ी राहत दी है। CM सेहत योजना में शामिल हुए 17 नए इलाज, अकेले रहने वालों को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा बढ़ा दिया पंजाब सरकार ने। अब इसमें ENT, जनरल सर्जरी, महिला स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया गया है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, AI वॉइस क्लोनिंग और फेक कॉल्स की अब खेड़ नहीं। गूगल लाया कमाल का स्कैम डिटेक्शन फीचर भी, ताकि वॉइस क्लोनिंग स्कैम और कॉलर आईडी स्पूफिंग के बढ़ते खतरे से निपटा जा सके। भविष्य में इस तरह के तकनीक से साइबर फ्रॉड और बढ़ेंगे तो उन्हीं से निपटने के लिए गूगल ये तकनीक विकसित कर रहा है। वहीं खबर है, अब जम्मू कश्मीर बनेगा देश का नया वेलनेस हब। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लिए आयुष मिशन का बड़ा प्लान बनाया है जम्मू के मुख्य सचिव ने। और खबर है, किसानों को मात्र 5 रुपए में मिलेगा घर बैठे बिजली कनेक्शन। खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को ये 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध करवा रही है, 5 हॉर्स पावर तक का। किसान भाई लोग इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं सरल संयोजन पोर्टल पर। और हेल्थ को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही कि उड़ीसा में बड़ी मोटापा और डायबिटीज की चुनौती। हर 5वां बच्चा या तो मोटापे से कुपोषित है या हर 5वें लोग में जन्मे डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही है। NFHS 6 की रिपोर्ट में सेहत को लेकर ये चिंताजनक डेटा सामने आ रहे हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को लेकर। आजकल हमारे देश में इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज काफी ज्यादा बढ़ रही है और उड़ीसा राज्य में मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है ऐसा। वहीं खबर है, वेतन में होगी बंपर बढ़ोतरी। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड के फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने इतने रुपए बढ़ेंगे। दरअसल हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड ने 6,800 कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, तो 500 से लेकर 2,000 रुपए तक की सैलरी बढ़ जाएगी। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, मेटा AI को चकमा देकर हैकर्स ने किए हाई प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक। एक एनोनिमस हैकर की तरफ से ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, विशेष विवाह अधिनियम को लेकर कि तलाक के लिए 1 साल का इंतजार अब जरूरी नहीं होगा। अगर पति पत्नी के बीच बिल्कुल स्थितियां साथ में रहने लायक नहीं है तो 1 साल पहले भी तलाक की मंजूरी दी जा सकती है ऐसा। वहीं खबर है, मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में SC ST का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अब SC BC और OBC को पहली बार 11% रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। उड़ीसा सरकार ने आरक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण कितना दिया जाएगा। वहीं खबर है, बिहार के भी 211 नए डिग्री कॉलेजों में 6 विषयों की होगी पढ़ाई। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। और केरलम में ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन तूफान। मुख्यमंत्री सतीशन ने युवाओं को अभियान से जोड़ने का आग्रह भी किया। केरल राज्य में नशाखोरी के खिलाफ सरकार ने यह नया अभियान शुरू किया है। चलिए UP की योगी कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो उत्तर प्रदेश में बकाया टैक्स पर 35% तक छूट मिलेगी। सरकारी वकीलों के मानदेय और बहस फीस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जिससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। और यूपी की योगी सरकार का कहना कि किसानों को भी उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में नई जेलें बनाई जाएगी, बंदियों के लिए भी ये नई नीति लागू की जा रही है। वहीं 5 एकड़ जमीन पर बनेगा पशु अस्पताल और गो आश्रय स्थल भी यूपी के झांसी में। और उत्तर प्रदेश में अब 12 साल की सेवा के बाद आबकारी निरीक्षक बन सकेंगे जिला आबकारी अधिकारी। वहीं व्यावसायिक वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है यूपी की योगी सरकार ने। बकाया टैक्स पर 35% तक की छूट मिलेगी, जुर्माना पूरी तरीके से माफ किया जाएगा। इसके अलावा भी यूपी कैबिनेट में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो देखिए, जैसे सरकारी वकीलों के मानदेय और बहस फीस में कितनी बढ़ोतरी की गई है, देख सकते हैं आप डिटेल्स इस बारे में ज्यादा जानकारी। जिला स्तर पर भी वकीलों का अब निर्धारित मानदेय ये तय किया गया है यूपी सरकार की तरफ से। ठीक है। इसके अलावा वाहन मालिकों को राहत मिली है, बकाया टैक्स पर 35% तक की सीधी छूट मिलेगी जो व्यावसायिक वाहन मालिक है उनको। वहीं उत्तर प्रदेश में 18 शहरों को बड़ी सौगात मिली है, लखनऊ, आगरा, अयोध्या समेत कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी सीधी। टोटल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 24 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रयागराज की सड़कों पर भी दौड़ेगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, बनेगा हाईटेक चार्जिंग स्टेशन और बस स्टैंड भी। और आगरा बरेली प्रयागराज में नए शहरों के विकास के लिए भी 355 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है सीएम योगी ने। 225 करोड़ की पहली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। और जो यूपी के 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी 1725 एयर कंडीशनर युक्त, उसके लिए प्रति बस 35-40 लाख रुपए का अनुदान खुद यूपी की योगी सरकार देगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू होगी। तो ये कुछ यूपी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने टाला विभागों का बंटवारा, अब 5 जून को ऐलान हो सकता है। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर की मिलावट केस मामले में ईडी ने 15 स्थानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली, आपराधिक आय से 45 करोड़ का निवेश पाया गया कई जगहों पर। और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन दिया, 15 जून को पूछताछ के लिए भी बुलाया। और बांग्लादेश में अब नहीं हो सकेगी घुसपैठ, शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ को सौंपी 32 एकड़ जमीन। और टीएमसी में जो पश्चिम बंगाल में बगावत देखने को मिल रही, इस बीच एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि बंगाल की सभी संगठनात्मक समितियां भंग कर दी गई हैं, पार्टी में व्यापक पुनर्गठन का ऐलान किया गया है। और शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत पहले चरण में 28.25 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए की धनराशि भी भेजी है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में अपडेट। वहीं खबर है राजस्थान में नदियों को प्रदूषित करने वाले नेटवर्क को खंगालेगी एसआईटी, भ्रष्ट अधिकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा। और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री खुद अब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे, पीएम मोदी की पेट्रोल बचाओ अपील का असर है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एमपी को भी बड़ी सौगात दी है, जुलवानिया, खंडवा, बैतूल होकर जाने वाली NH-347B अपग्रेड की जाएगी, 4415 करोड़ का बजट खर्च होगा। ये नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को एमपी में मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में खनिज वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे अवैध रेत परिवहन पर सख्ती बरती जाएगी अब। और एमपी के खरगोन में 980 संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, बोले झारखंड में हर नागरिक का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। और झारखंड में भी 709 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं एजुकेशन पर अपडेट आ रहा, राजस्थान में आरएएस 2026 में 607 पदों पर भर्ती के लिए आज से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की इनकम का नया सोर्स बनेगा आज, और मिथुन राशि वाले लोगों को भी तरक्की के योग दिख रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों,
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।